नमस्ते, मैं आराव हूँ। 9R3 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। डिजाइनिंग इंटरफेसेस पैटर्न्स फॉर इफेक्टिव इंटरैक्शन डिजाइन, जेनिफर डिडवेल की इंटरफेस और इंटरैक्शन डिजाइन पर एक संदर्भ केंद्रित पुस्तक है। इसका तीसरा संस्करण चार्ल्स ब्रूअर और आइने वेलेंसिया के सहयोग से विकसित हुआ है। पुस्तक का उद्देश्य किसी एक दृश्य शैली या तकनीकी प्लेटफॉर्म का नुस्खा देना नहीं, बल्कि बार बार आने वाली उपयोगिता समस्याओं के लिए आजमाए हुए डिजाइन पैटर्न उपलब्ध कराना है। इसमें वेब एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप और डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर के उदाहरणों के माध्यम से बताया गया है कि उपयोगकर्ता किसी उत्पाद को कैसे समझते, खोजते और संचालित करते हैं। पैटर्न भाषा का अर्थ यहाँ तैयार स्क्रीन की नकल नहीं है। हर पैटर्न एक समस्या, उसके संदर्भ, संभावित समाधान, विकल्प और गलत उपयोग के जोखिम को जोड़ता है। पुस्तक उपयोगकर्ता की जरूरत समझने, सूचना और कार्यों की संरचना बनाने, नेविगेशन स्पष्ट रखने, दृश्य पदानुक्रम स्थापित करने और जटिल डेटा दिखाने जैसे क्षेत्रों को एक साथ रखती है। इसलिए यह सैद्धांतिक घोषणा पत्र से अधिक निर्णय लेते समय काम आने वाली व्यावहारिक डिजाइन लाइब्रेरी है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, पैटर्न भाषा से इंटरफेस निर्णयों को दोहराने योग्य बनाना। पुस्तक का केंद्रीय विचार यह है कि अच्छे इंटरफेस अक्सर अलग अलग पहचानी जा सकने वाली समस्याओं के उत्तर होते हैं। पैटर्न इन उत्तरों को नाम, संदर्भ और तर्क देता है, ताकि डिजाइनर हर परियोजना में शून्य से विचार शुरू न करे। उदाहरण के लिए, किसी लंबे फॉर्म, विकल्पों से भरी नेविगेशन व्यवस्था या घने डेटा दृश्य में समस्या केवल स्क्रीन पर वस्तुएं रखने की नहीं होती। असली प्रश्न यह होता है कि उपयोगकर्ता को किस क्षण क्या समझना, चुनना या याद रखना है। पैटर्न इस प्रश्न को छोटे उपयोगी निर्णयों में बांटते हैं। टिडवेल का दृष्टिकोण पैटर्न को कठोर नियम नहीं मानता। एक ही समाधान मोबाइल, डेस्कटॉप, विशेषज्ञ उपयोगकर्ता या पहली बार आने वाले व्यक्ति के लिए समान रूप से उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए पुस्तक विकल्पों और उन स्थितियों पर ध्यान देती है जहां कोई पैटर्न इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह बात विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि लोकप्रिय इंटरफेस घटकों की नकल करना आसान है, पर उनके पीछे का कार्य संदर्भ समझना कठिन है। पैटर्न का सही उपयोग डिजाइनर को समाधान की सतह नहीं, उसका कारण देखने के लिए प्रेरित करता है। इस पद्धति की सीमा भी स्पष्ट है। पैटर्न सांस्कृतिक अपेक्षाओं, उत्पाद के क्षेत्र और बदलती तकनीक से मुक्त नहीं होते, अतः इन्हें उपयोगकर्ता अनुसंधान का विकल्प नहीं, साझा डिजाइन शब्दावली और प्रारंभिक परिकल्पना के रूप में लेना चाहिए। पुस्तक की व्यावहारिक शक्ति इसी संतुलन में है। दूसरा, उपयोगकर्ता के मानसिक मॉडल के अनुरूप सूचना और कार्य संरचना। पुस्तक इंटरफेस संरचना को केवल मेनू, टैब या पन्नों की सूची का प्रश्न नहीं मानती। उपयोगकर्ता उत्पाद के भीतर किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक मानसिक नक्शा बनाता है। यदि वर्गीकरण, नामकरण और कार्यों की क्रम रचना उसके अपेक्षित मॉडल से मेल नहीं खाती, तो सुंदर दृश्य भी भ्रम पैदा कर सकते हैं। इसलिए डिजाइन शुरू होने से पहले उपयोगकर्ता की जरूरत, उसका काम, उसकी भाषा और निर्णय लेने के क्रम को समझना आवश्यक है। इस आधार पर सूचना संरचना का काम दोहरा है। पहले संबंधित चीजों को इस तरह समूहित करना कि व्यक्ति अनुमान लगा सके कि कोई विकल्प कहाँ मिलेगा। दूसरे, जटिलता को इस तरह बांटना कि हर स्तर पर आवश्यक चुनाव ही सामने आए। बहुत अधिक स्तर नेविगेशनल दूरी बढ़ाते हैं, जबकि एक ही जगह बहुत सारे विकल्प रखने से स्कैन करना कठिन हो जाता है। पुस्तक इन तनावों को संतुलित करने के लिए परिचित संगठनात्मक रूपों और स्पष्ट लेबलों की उपयोगिता दिखाती है। यह दृष्टि फीचर केंद्रित उत्पाद विकास के लिए महत्वपूर्ण सुधार है। संगठन यदि अपनी आंतरिक टीमों, डेटाबेस या तकनीकी ढांचे के आधार पर स्क्रीन बनाता है, तो उपयोगकर्ता को सिस्टम की भाषा सीखनी पड़ती है। इसके विपरीत, कार्य और लक्ष्य के आधार पर बनाई संरचना व्यक्ति को परिणाम तक पहुंचने देती है। पुस्तक इसी कारण इंटरफेस डिजाइन को उत्पाद की अंतर्निहित वास्तुकला से जुड़ा पर उपयोगकर्ता की समझ से संचालित काम मानती है। तीसरा, वेफाइंडिंग और नेविगेशन से उपयोगकर्ता को दिशा का भरोसा देना। वेफाइंडिंग का अर्थ है इंटरफेस में उपयोगकर्ता को यह लगातार समझ में आना कि वह कहाँ है, यहाँ क्या कर सकता है और अगले कदम में कहाँ जा सकता है। पुस्तक इसे गौण सजावट नहीं, उपयोगिता की बुनियादी शर्त के रूप में रखती है। किसी उत्पाद में सामग्री और कार्य कितने ही अच्छे हों, यदि व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति, उपलब्ध रास्तों और वापस लौटने के तरीके को नहीं पहचानता, तो उसकी गति और भरोसा दोनों घटते हैं। प्रभावी नेविगेशन केवल एक स्थायी मेनू लगाने से नहीं बनता। वर्तमान स्थान के संकेत, चुने हुए भाग का दृश्य भेद, शीर्षक, संदर्भानुकूल कार्य और अनुमानित लिंक व्यवहार मिलकर दिशा बनाते हैं। उपयोगकर्ता को हर क्लिक से पहले इतना संकेत मिलना चाहिए कि वह संभावित परिणाम का अनुमान लगा सके। यह विशेष रूप से बहुस्तरीय सामग्री, प्रशासनिक टूल और खरीद या आवेदन जैसी प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण है, जहां गलत मोड़ से समय और डेटा दोनों का नुकसान हो सकता है। पुस्तक का व्यापक तर्क यह है कि नेविगेशन को व्यक्ति की स्मृति पर अनावश्यक बोझ नहीं डालना चाहिए। जब स्क्रीन पिछले निर्णयों, वर्तमान संदर्भ और उपलब्ध विकल्पों को स्पष्ट करती है, तब उपयोगकर्ता बार बार याद करने के बजाय पहचान के आधार पर आगे बढ़ता है। मोबाइल जैसी सीमित स्क्रीन पर यही सिद्धांत और कठिन हो जाता है, क्योंकि जगह कम होने पर भी संदर्भ खोना नहीं चाहिए। इसीलिए नेविगेशन पैटर्न को कंटेंट, कार्य और उपकरण के साथ मिलाकर चुनना जरूरी है। चौथा, दृश्य पदानुक्रम, रंग और लेआउट को उपयोगिता के उपकरण की तरह देखना। डिजाइनिंग इंटरफेसेस दृश्य डिजाइन को केवल उत्पाद की चमक या ब्रांड सज्जा तक सीमित नहीं करती। पुस्तक दिखाती है कि आकार, स्थान, कंट्रास्ट, संरेखण, सफेद जगह और रंग उपयोगकर्ता का ध्यान नियंत्रित करते हैं। स्क्रीन देखने वाला व्यक्ति हर तत्व को समान क्रम में नहीं पढ़ता, वह पहले प्रमुख संकेतों को देखता है, फिर अपने लक्ष्य से संबंधित जानकारी छांटता है। दृश्य पदानुक्रम इसी स्वाभाविक स्कैनिंग को सहारा देता है। इसका व्यावहारिक अर्थ है कि प्राथमिक कार्य और जरूरी जानकारी को स्पष्ट प्रमुखता मिले, जबकि सहायक या कम बार उपयोग होने वाले विकल्प शांत रहे। यदि हर बटन चमकीला हो, हर शीर्षक बड़ा हो और हर सूचना चेतावनी की तरह दिखे, तो कोई भी चीज वास्तव में प्रमुख नहीं रहती। रंग के साथ भी यही सिद्धांत लागू होता है। रंग स्थिति, समूह, प्राथमिकता या प्रतिक्रिया का संकेत दे सकता है, लेकिन केवल रंग पर निर्भर सूचना कुछ उपयोगकर्ताओं के लिए अस्पष्ट हो सकती है। इसलिए पाठ, आकार या प्रतीक जैसे अतिरिक्त संकेत जरूरी होते हैं। यह अध्याय क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह सौंदर्य और कार्यक्षमता के बीच कृत्रिम विभाजन को तोड़ता है। सुव्यवस्थित लेआउट उपयोगकर्ता को कम सोचने, जल्दी पहचानने और गलती से बचने में मदद करता है। फिर भी पुस्तक के पैटर्न किसी निश्चित फैशन को अंतिम नहीं बताते। दृश्य चुनाव को सामग्री की घनत्व, पढ़ने के संदर्भ, उपकरण और उपयोगकर्ता के लक्ष्य के अनुसार परखा जाना चाहिए। अंत में, जटिल डेटा को समझने योग्य दृश्य रूप और नियंत्रित खोज में बदलना। आधुनिक इंटरफेस में उपयोगकर्ता केवल सरल पन्ने नहीं देखते, वे सूचियों, तुलना तालिकाओं, खोज परिणामों, डैशबोर्ड और बदलते डेटा के साथ काम करते हैं। पुस्तक जटिल जानकारी को प्रदर्शित करने की समस्या पर ध्यान देती है, क्योंकि बहुत अधिक डेटा उपयोगी होने के बजाय निर्णय को धीमा कर सकता है। समाधान डेटा कम करना भ्रम नहीं है, जरूरी बात यह है कि संबंध, अंत, प्रवृत्ति और प्राथमिकता ऐसे दिखें कि उपयोगकर्ता उन्हें तेजी से पहचान सके। वैकल्पिक दृश्य, उचित समूह, क्रमबद्धता, फिल्टर और स्पष्ट सारांश अलग अलग जरूरतों के लिए उपयोगी होते हैं। कोई व्यक्ति पहले समग्र रुझान देखना चाहता है, दूसरा किसी विशेष रिकॉर्ड तक पहुंचना चाहता है और तीसरा दो विकल्पों की तुलना करना चाहता है। एक ही डेटा प्रस्तुति इन सभी कामों में श्रेष्ठ नहीं होगी। इसलिए पुस्तक ऐसे पैटर्नों की ओर ले जाती है जो दृश्य को कार्य के अनुरूप बनाते हैं, न कि केवल जानकारी को सजाते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन में ईमानदारी और पठनीयता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सजावटी ग्राफिक्स, अस्पष्ट पैमाने या अत्यधिक इंटरैक्शन उस अर्थ को छिपा सकते हैं जिसे दिखाना था। उपयोगकर्ता को यह समझना चाहिए कि वह क्या देख रहा है, किस आधार पर परिणाम बदल रहे हैं और अगला उपयोगी कदम क्या है। इस तरह डेटा प्रदर्शन, नेविगेशन और निर्णय समर्थन एक ही डिजाइन समस्या के जुड़े हुए हिस्से बन जाते हैं। निष्कर्ष में, यह पुस्तक उन इंटरैक्शन डिजाइनरों, यूएक्स पेशेवरों, प्रोडक्ट डिजाइनरों, फ्रंट एंड डेवलपर्स और दृश्य डिजाइनरों के लिए सबसे उपयोगी है, जो उपयोगकर्ता सामने वाले सॉफ्टवेयर पर वास्तविक निर्णय लेते हैं। नए डिजाइनर इसे क्षेत्र की शब्दावली, सामान्य समस्याओं और स्थापित समाधान रूपों के मार्गदर्शक के रूप में पढ़ सकते हैं। अनुभवी पेशेवरों के लिए इसका मूल्य त्वरित प्रेरणा, टीम चर्चा और किसी डिजाइन विकल्प के पीछे तर्क जांचने में है। यह पुस्तक किसी संपूर्ण यूएक्स प्रक्रिया, उपयोगकर्ता अनुसंधान पद्धति या ब्रांड प्रणाली का स्थान नहीं लेती। इसके बजाय वह उस चरण में विशेष उपयोगी बनती है जहां शोध से मिली समझ को स्क्रीन, प्रवाह, नियंत्रण और सूचना प्रस्तुति में बदलना होता है। समान पुस्तकों की तुलना में इसकी अलग पहचान इसका पैटर्न आधारित संगठन है। यह अमूर्त सिद्धांतों की लंबी व्याख्या पर निर्भर रहने के बजाय समस्या, संदर्भ और लागू करने योग्य विकल्पों के बीच संबंध बनाती है। वेब, डेस्कटॉप और मोबाइल के उदाहरण इसे किसी एक प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं रहने देते। साथ ही दृश्य पदानुक्रम, नेविगेशन, कार्य समर्थन और डेटा प्रस्तुति को एक ही संदर्भ संग्रह में रखने से डिजाइन के अलग अलग हिस्से जुड़कर सामने आते हैं। पुस्तक को तैयार नुस्खों की सूची मानना गलत होगा। पैटर्न समय, संस्कृति और उत्पाद संदर्भ के साथ बदल सकते हैं, पर इसे विवेकपूर्ण तरीके से उपयोगकर्ता परीक्षण और उत्पाद की विशेष जरूरतों के साथ पढ़ा जाए तो यह अनुमान के बजाय स्पष्ट तर्क से इंटरफेस बनाने में मदद करती है। यही इसकी स्थायी व्यावहारिक उपयोगिता है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जेनिफर टिडवेल, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।